جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتداءً تو میں آپ کا بڑا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. اس میں میرا بھائی، اگر ہم ان دو چیزوں کو تھوڑا علیحدہ علیحدہ کر لیں، فرقہ وارانہ معاملے کو اور پاکستان کی جو آپ نے 3 دہائیوں کی بات کی یا 2.5 دہائیوں کی، اس کو ذرا، کیونکہ فرقہ واریت کو سمجھنے کے لیے پاکستان کا جو mid-80s میں یا early-80s میں پاکستان کا جو رول شروع ہوا، اسے ہمیں فوکس کرنا بہت ضروری ہے، ادروائز ہم نہیں کر سکیں گے، اسے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. اب دیکھیں کہ جب جہاد افغانستان شروع ہوا تو اس وقت پاکستان میں جہاد کے نام پر جن لشکروں کو بھرتی کیا گیا، ہمارے مسلک کے تمام مذہبی و سیاسی اکابرین کا اس وقت بھی یہ خیال تھا کہ یہ جہاد نہیں، فساد فی الارض ہونے جا رہا ہے، کیونکہ رشیا کے ڈاؤن فال کے بعد یا رشیا کے ٹوٹنے کے بعد اس کا جو ریورس امپیکٹ آئے گا وہ پاکستان کے اوپر آئے گا. اور اس سلسلہ میں مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ ہمارے ایک برادر اسلامی ملک سعودی عرب نے بڑا اہم رول پلے کیا. پاکستان میں جس طرح جہادیوں کی فیکٹریاں لگائی گئیں، یہاں پر پوری دنیا سے ملیٹنٹس اکٹھے کیے گئے، وہ کرمنلز بھی تھے. اگر آپ دیکھیں تو افغانستان جہاد کے بعد جو بہت سارے لوگ جو وائلنس میں ملوث پائے گئے یا جن کے معاملات پاکستان میں کرمنل ریکارڈ سامنے آئے، تو پتہ لگا کہ یہ تو اپنے ملکوں کے اندر بھی وانٹڈ لوگ ہیں. اور اس افغانستان جہاد کے اندر بدقسمتی سے خالی پاکستان نہیں، پوری عرب ورلڈ سے، پوری افریقہ سے ملیٹنٹس کو، کرمنلز کو اکٹھا کیا گیا اور انہیں ایک جہاد کا نام دے کے افغانستان میں گھسیڑ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ اسلام کی سربلندی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمیں اب رشیا کے ساتھ جو لڑائی تھی افغانوں کی، اسے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم اسے جہاد ہی سمجھتے ہیں، لیکن جہاد کا ایک پراپر سیٹ کرائیٹیریا ہوتا ہے. جہاد میں کرمنلز کو تمام معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں دیے جاتے، لوٹرز کے ہاتھ میں تمام معاملات نہیں دیے جاتے، پھر جہاد کی کمان کسی ایک جگہ کے اوپر ہوتی ہے. یہ تمام چیزوں کا فقدان تھا اس دور کے اندر. جب یہ رشیا کا فال ہوا تو اس کے بعد اب ان لوگوں کو ان کے ہی ہوم کنٹریز نے انوانٹڈ ڈکلیئر کر دیا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے. دے آر کرمنلز، دے آر ملیٹینٹس اینڈ دے آر طالبان، یہ ٹرم ہم نے اس وقت سنی، مقصد منظر عام پر آنا شروع ہوئی ایسا ایسا. یہ لوگ، ان لوگوں نے رخ کیا پاکستان کا. اب ظاہر ہے یہاں پر یہ لوگ تو قتل و غارت کرنے کے ہی عادی ہیں، معاشرے میں کوئی پازیٹو رول تو پلے نہیں کر سکتے. یہاں کی زبان سے آگاہ نہیں تھے، ثقافت سے آگاہ نہیں تھے، رہن سہن سے آگاہ نہیں تھے، تو ان لوگوں نے وہی طریقہ اختیار کیا اور وہ پھر یہ اعلی کار بنے دوبارہ ان انٹرنیشنل طاقتوں کے، جنہوں نے، جن کا ہدف اب پاکستان تھا. پہلے ان طاقتوں کا ہدف رشیا کا فال تھا ان افغانستان، جو انہوں نے ان کو یوز کر کے اچیو کیا، اور اس کے فوراً بعد پاکستان ہدف بن گیا. پاکستان ہدف بن گیا اسرائیل کا، پاکستان ہدف بن گیا ہندوستان کا، پاکستان ہدف بن گیا امریکنز کا. یعنی جن لوگوں نے فائنانس کیا اس تمام جہاد کو، انہی لوگوں نے انہیں طالبان بھی ڈکلیئر کیا، انہیں دہشت گرد بھی ڈکلیئر کیا، انہیں وانٹڈ بھی ڈکلیئر کیا، ان کے سر کے اوپر ہیڈ منی بھی رکھی. اب ان لوگوں کو انہی ممالک کی پشت پناہی بھی حاصل رہی، فنڈنگ حاصل رہی. پاکستان کو توڑنے کے لیے mid-80s تک اگر آپ آئیں، یہ ہوگی جہاد افغانستان کے حوالے سے میں نے اختصار کے سامنے آپ کے صورتحال بیان کرنے کی کوشش کی. اب اگر اسی صورتحال کو ساتھ جوڑیں تو ٹل early-80s یا ایون ٹل mid-80s پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس نہیں تھا. ہمیں ایک بہت ریئلسٹک اپروچ رکھنی چاہیے اور وہ اپروچ یہ ہے کہ مختلف مسالک کے درمیان فقہی اختلافات موجود ہیں، اور ہمارے مسلک کے جو اکابرین تھے ان کی فلسفی یہ ہے کہ آپ کا اختلاف باقی بھی رہنا چاہیے، لیکن قتل قتال کا، نعروں کے زور پر کسی خاص کمیونٹی کو ہدف بنانے کا، یا میلاد کا نام لینے والوں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و ناموس کی بات کرنے والوں کو قتل کرنا، یہ کسی بھی مسلک میں، کسی سیکٹ میں جائز نہیں ہے. پہلی مرتبہ اس سے پہلے، آپ دیکھیں نا، یہ سوچنے والی بات ہے کہ ٹل mid-80s پاکستان میں اہل سنت بھی تھے، اہل دیوبند بھی تھے، پاکستان میں اہل حدیث بھی تھے، اور پاکستان میں اہل تشیع بھی تھے. یہ چاروں کمیونٹیز اسی پاکستان میں ٹل mid-80s وداؤٹ سیکٹیرین وائلنس سروائیو کرتی رہی ہیں، کوئی معاملات نہیں آئے. मिड 80s के बाद क्यों आई, इसलिए कि जब रशिया का फॉल हो गया, पाकिस्तान के खिलाफ वो तमाम ताकतें जो पाकिस्तान को, और पाकिस्तान एटमी पावर भी बनने जा रहा था, पाकिस्तान के बम को एटमी बम भी कहा गया, पाकिस्तान के एटमिक तमाम प्लान को, तो पूरी दुनिया ने एक पाकिस्तान में रेशा दवानियों का, साजिशों का सिलसिला शुरू कर दिया। उसमें हिंदुस्तान पेश था। मैं बल्कि इस हवाला से हमारे पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड जनरल हैं, जनरल जियाउद्दीन भट्ट साहब, जो मुशर्रफ कू वाले इंसिडेंट में जिन्हें मियाँ साहब ने उस जगह पर लाए, उनका एक इंटरव्यू भी कोट करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात टीवी के ऊपर कही ऑन रिकॉर्ड, और दीगर बहुत सारे अफसरान ने भी कही कि पाकिस्तान के कुछ एरियाज से एक मखसूस सेक्ट के ऐसे उलमा पकड़े गए कि जब उनको इंटेरोगेट किया गया था, पता लगा कि वो रॉ के या वो मुसाद के एजेंट्स हैं, जब इंटेरोगेट किया गया तो ये पता लगा कि इवन ये लोग हिंदू हैं या सिख हैं, इवन इन लोगों के इस्लामी शरिया अहकाम के मुताबिक खतने भी नहीं हुए हुए। दिस इज द स्टेटमेंट पास्ड बाय द जनरल, रिटायर्ड जनरल ऑफ पाकिस्तान, और मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेज के लोगों की तरफ से। तो ये बात वाजह होगी कि इन मुल्कों की पाकिस्तान के अंदर बहरहाल एक इन्वॉल्वमेंट थी, ये पाकिस्तान को एटमी ताकत नहीं देखना चाहते थे, पाकिस्तान एटमी ताकत, और ये मकसद डिक्लेयर हुआ दुनिया के सामने लेट 90s में जाके कि पाकिस्तान एटमी पावर 98 में, लेकिन दर हकीकत पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का दुनिया को पता लग चुका था कि ये बाकायदा सिर्फ अनडिक्लेयर्ड एटमिक पावर पाकिस्तान को कंसिडर किया जाता रहा है आफ्टर मिड 80s। उसको तोड़ने की बड़ी कोशिश की गई, फिर जब ये देखा गया कि पाकिस्तान का डिफेंस पाकिस्तान की इंतहाई एक प्रोफेशनल आर्मी के हाथ में है और ये मुमकिन नहीं रहेगा, जिस तरह इराक का एटमी प्रोग्राम पूरे का पूरा इसराइल ने नेस्तो नाबूद कर दिया, तो इस पाकिस्तान पे भी कोशिश की गई, रिपोर्ट्स बहुत सारी आपके पास अवेलेबल हैं, किस तरीके से उन्हें रोका गया इसराइल की जानब से या हिंदुस्तान की जानब से, मिली भगत थी, जहाज भी कुछ एयरबेसी से उड़े पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर अटैक करने के लिए, लेकिन चूंकि पाकिस्तान का दिफा एक इंतहाई मुहिब वतन, एक ट्रू इस्लामी और एक इंतहाई प्रोफेशनल फोर्स के हाथ में था, तो पाकिस्तान फौज की इस प्रोफेशनलिज्म की बुनियाद पर पाकिस्तान का ये एटमी प्रोग्राम महफूज रहा। अब कोशिश ये की गई कि इनको किसी ऐसे मामलात में उलझा दिया जाए कि पाकिस्तान दाखिली खलफशार का शिकार हो जाए। अब देखें, इंडियन एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड है, और अभी ये राहुल गांधी साहब की जो वालदा हैं, मेरे जहन में उनका नाम नहीं, जिस वक्त कांग्रेस की सरबराह हैं, हाँ सोनिया गांधी साहब, उनका भी बहुत अरसा पहले का एक बयान ऑन द रिकॉर्ड है कि हम पाकिस्तान को सकाफती गिलगार से तबाह करेंगे। आप देखिए हमारे चैनल्स के ऊपर पाकिस्तान में किस तरीके से इंडियन सकाफत को प्रमोट किया गया, इंडियन मूवीज़ को प्रमोट किया गया, इंडियन गानों को प्रमोट किया गया, इंडियन ड्रामों को प्रमोट किया गया, इंडियन कल्चर इन ऑल, हमारी शादियों में इंडियन कल्चर आ गया, हमारे रसूम और रवाज में इंडियन कल्चर आ गया। ऑन द अदर हैंड इसका काउंटर नहीं किया गया, और काउंटर इस तरह किया जाना था कि आपने अपनी नई जनरेशन को इस पाकिस्तान के क्याम के दौरान जो लाखों की तादाद में कुर्बानियाँ हुई, यानी जिसे जो गैर जानबदार मुअर्रख है, जो अंग्रेज़ है, वो ये कहता है कि कमोबेश 10 लाख मुसलमानों का खून बहा और उन्होंने शहादत का दर्जा उन्हें मिला, जिसमें हमारी माओ बहनों की इज्जतें पामाल की गईं। इसी लाहौर के अंदर हमारे सूबाई कैपिटल में ऐसी ट्रेनें भी भेजी गईं जो हमारी माओ बहनों के मखसूस अज़ा के साथ काट काट के बरी हुई थी। ऑन द रिकॉर्ड है, और दीज पिक्चर्स आर इनफैक्ट अवेलेबल, अगर आप जाएं मकसद है इंसान रिसर्च करे इसके ऊपर। लेकिन हमारा इस्लामियत का निसाब चेंज कर दिया गया, हमारा मुतालिया पाकिस्तान मकसद जो इवन हम भी पढ़ते थे इन 80s एंड इन 90s, अब के मुकाबले में तो हम उसे अब अगर वो देखें तो वो लगता है कि बहुत शाहकार चीज़ थी, लेकिन हमारे मुतालिया पाकिस्तान में इनफैक्ट देर इज़ नथिंग ओवर देयर रिगार्डिंग पाकिस्तान स्ट्रगल, रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये हमारी बेहिसी सामने आई, यहाँ पर भी हमारी मुजरमाना खामोशी हमारी हुकूमतों की रही। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आप देखें जिस तरह पाकिस्तान का ये इंडस वाटर कमीशन के हवाला से जो हमारे साबिक हेड थे, मैं अब उनका नाम नहीं लेता, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सीरियस ऑब्जेक्शन आया कि जब इंडिया डैम बना रहा था तो उनको फाइनेंस किया गया कि डोंट गो टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी एक साइड पे हमारी नस्ल को उसकी सकाफत से, उसकी तहजीब से, उसके मज़हब से दूर किया जाता रहा, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, और दूसरी साइड के ऊपर जो हमारे इंतज़ामी अफसरान थे, अहबाब थे, उनको बाकायदा प्रमोट किया जाता रहा। एक बड़ी शर्मनाक रिपोर्ट कुछ अरसा पहले, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले, मंजरे आम पर आई कि पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट के अंदर जो आपकी ज़रई अजनास के हवाला से कीमतों का डिस्कशन होती है, खाद के हवाला से, इस हवाला से भी इंडिया ने अपनी लॉबिंग अंदर कायम की हुई है। और पाकिस्तान में आज जो आलू, टमाटर, ये तमाम चीज़ों पे कौम रो रही है, इसके अंदर दरअसल इंडिया है। अब देखें कि दुश्मन ने ये जंग हमारे साथ कितने महाजों पर लड़ी, हर महाज पर लड़ी, और हम किसी एक महाज पर भी उन्हें डिफेंड नहीं कर सके। इसी तरह उन्होंने ये जंग लड़ी कि पाकिस्तान में चूंकि लोगों की मजहब के साथ वाबस्तगी बहुत मुसल्लम है, बहुत गहरी है, पाकिस्तान में ऐसे अनासर को प्रमोट किया गया जिसमें बदकिस्मती से हमारे एक इस्लामी मुल्क की सरपरस्ती भी उन्हें रही, और ताहाल है तालिबान को या इन अनासर को, जिन्होंने एक नारे की बुनियाद पर किलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। फिर उसमें आपके मज़ारात को टारगेट किया गया, आपकी इमाम बारगाहों को टारगेट किया गया, आपकी मसाजिद को टारगेट किया गया, या रसूलल्लाह लिखने वाले जवानों को शहीद किया गया, सरे बाजार अगर मुहर्रमुल हराम के दौरान कुछ जुलूसों का सिलसिला था तो उन लोगों को भी मारा गया। बल्कि आप देखें कि अगर आप 80s तक की, इवन आई टॉक अबाउट टुडे, आज भी अगर आप जाएं तो मुहर्रमुल हराम में हम तो ये कहते हैं कि इमाम हुसैन पूरी दुनिया के लिए हैं। इमाम हुसैन सिर्फ अहले तशय्यो के लिए नहीं है, इमाम हुसैन सिर्फ अहले सुन्नत के लिए नहीं है, इमाम हुसैन पूरी रूए कायनात के लिए हैं। हर वो इंसान जिसके अंदर का इंसान जिंदा है उसके लिए इमाम हुसैन की मिसाल मौजूद है। तो जिस वक्त मुहर्रमुल हराम में अहले तशय्यो की तरह से जुलूसों का सिलसिला होता है तो नजर न्याज का सिलसिला हमेशा अहले सुन्नत की तरफ से रहा, सबीलों का सिलसिला रहा, आज भी है, ताहाल है। इसी तरीके से मुहर्रम जब रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूसों का मौका आया तो अहले तशय्यो की तरफ से उनकी इमाम बारगाहों से जब गुजरे या उनके इबादतगाहों से तो बाकायदा वहां पर गुलपाशी और ये मनाजर आज तक ये कौम देखती है और अक्सर जगहों पर देखती है। लेकिन बदकिस्मती ये कि उस अक्सर को मीडिया से छुपा दिया गया और उस अकलियत को प्रमोट किया गया। उस अकलियत को प्रमोट करने में मुझे इंतहाई बदकिस्मती से यह बात भी कहनी पड़ेगी कि हमारे रियासती इदारों की सरपरस्ती भी हासिल रही। उन्होंने जिस जिन की परवरिश की, आज वो जिन उस बोतल से बाहर निकल के उनके सामने खड़ा हो चुका। हमारे बुजुर्ग, हमारे अकाबरीन 80s में चीखते रहे कि आप इन लोगों की सरपरस्ती ना करें, सरकारी और हुकूमती सरपरस्ती के अंदर फिरकावारियत और दहशतगर्दी ना करवाएं। मकसद आप ये देखें कि उस एक नारे को परवान चढ़ाया गया और फिर ये बीज 20 साल बोया गया भाई। ये अब फसल पक के तो जमीन से ऊपर आनी शुरू हुई, 20 साल ये जमीन के अंदर था। आज पूरी मुल्क का पूरा कौम रो रही है सेक्टेरियन वायलेंस को, दहशतगर्दी को, एक्सट्रीमिज्म को। 2 दिन की पैदावार नहीं है, 2 साल की पैदावार नहीं है। दे हैव स्पेंट 20 years, मिनिमम ऑफ 20 years ऑन दिस। और उसमें अब इसका तदारुक करने के लिए तमाम मुहिबान पाकिस्तान को, जिसमें आप मसालक के लिहाज से बात करें, आप सिक्योरिटी एजेंसीज के लिहाज से बात करें, आप हुकूमती सतह पर बात करें, उनको अपना रोल प्ले करना होगा। अदरवाइज अब तो ये मकसद देखे ना, इससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या होगी कि अब वो हुकूमती रिट नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नहीं मानते, वो ये कहते हैं हम सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं मानते, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के गले काट कर उसके साथ फुटबॉल या सॉकर खेलते हैं और हम उनसे मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। उन्होंने उलामाए हक को शहीद किया, उन्होंने हक बात कहने वालों को शहीद किया, सिविलियंस को निशाना बनाया, सिक्योरिटी फोर्सेस को बनाया, मसलकी ग्राउंड्स के ऊपर अहले सुन्नत को, अहले तशय्यो को निशाना बनाया, मुकद्दस जो इबादत गाहें हैं उनको निशाना बनाया गया। और सबसे बढ़ के ये कि आप देखें पाकिस्तान में जो अकलियतें हैं उनको निशाना बनाया गया। यानी उनकी तरफ से अगर ये कहा जाए, मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान में इसे बाज़ औक़ात कहा जाता है शिया सुन्नी प्रॉब्लम है, तो चर्च के ऊपर किसका प्रॉब्लम था? वहां पे तो ना शिया था ना सुन्नी था। सवात में सिखों को मारा गया। अभी आपके रिसेंटली जो आपके आपके कोह पैमा पाकिस्तान में मौजूद थे, जनरल बलोच को मारा गया, क्या स्टेनिंग ग्राउंड्स मारा गया? वो कोह पैमा जो मुसलमान भी नहीं थे, पाकिस्तान में सिर्फ टूरिज्म के लिए आए थे, उनको भी आपके कोहसान और चलास में जिस तरीके से मारा गया, पाकिस्तान में टूरिज्म की इंडस्ट्री के ऊपर आखिरी कारी जरब लगाई गई। मेरा अगला सवाल यह है कि क्या श्रीलंका की टीम जो पाकिस्तान खेलने के लिए आई हुई थी उसके ऊपर उसके अंदर भी क्या महिला जयवर्धना या तापातु उनमें से कोई शिया था? या उनमें से कोई सुन्नी था वहां पे, कोई ये एक माइंड सेट है, ये एक सोच है जिसने पाकिस्तान के हर तबके को निशाना बनाया। और देखें हमारे सामने मौजूदा मिसालें, जिन लोगों ने इन्हें प्रमोट किया, जहां पर ये परवान चढ़े, जिन लोगों ने इन्हें अपनी औलाद कहा, जिन लोगों ने इन्हें अपना बच्चा कहा, जिन लोगों ने इन्हें प्रमोट किया, जो आगे लेकर आए, आज अगर वो ये कहें कि जनाब तालिबान हमारी बात नहीं मानते, दहशतगर्द हमारी बात नहीं मानते, कलदम जमातें हमारी बात नहीं मानती, तो मैं आई एम रियली सॉरी टू से कि मकसद है अब तो ये उनकी बोई हुई फसल है, ये जब कटेगी तो अब साथ वो भी जाएंगे। उन्हें ये चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए। और अब देखें मैं बींग ले मैन, मैं जानता हूँ कहाँ पर ये पले, कहाँ पर ये बड़े, किन मदरसों में इनकी तरबियत होती है, कहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं। कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की वो सिक्योरिटी एजेंसीज जिनको दुनिया की बेस्ट एजेंसीज कहा जाता है, पाकिस्तान की वो हुकूमत का पूरा सुपर स्ट्रक्चर, उनको इलम ना हो कि ये कहाँ पढ़ रहे थे, ये कहाँ पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से अपने ऑर्डर्स लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है विल ऑफ द स्टेट पे, जो कि नहीं है। मौजूदा हुकूमत तो खैर बिल्कुल ही चूंकि दहशतगर्दों की ही लाई हुई हुकूमत है, इसमें तो विल खैर आ ही नहीं सकती ना होगी, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आ रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये अफरीत इस तरह शरायत कर चुका है हमारी माशरे के अंदर कि अब इसका निकालना पूरी कौम को यकसू होना पड़ेगा, आपकी सिविल सोसाइटी को, आपके मजहबी हलकों को, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को, आपके गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर आपको अपनी पॉलिसी रिवाइव करनी पड़ेगी, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, उसे ओवरलुक करना पड़ेगा और इन कैमरा सेशन में नहीं करना पड़ेगा। आई मीन यू हैव द नीड टू डू दिस इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के लोगों को पता लगे कि भाई हमारी गवर्नमेंट इस पॉलिसी पर अमल पैरा है। पूरी अब मौजूदा हुकूमत अगर दहशतगर्दी के हवाले से कुछ सीरियस स्टेप उठाए तो आप यकीन करें अपने तमाम पॉलिटिकल डिफरेंसेस को पीछे करके जस्ट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान आई बी द फर्स्ट वन, आई मीन हु विल शेक हैंड विद मियां नवाज शरीफ, आई बी द फर्स्ट वन। और तमाम ताकतें जो मुहिबान पाकिस्तान हैं जो इस वो तमाम हाथ बटाएंगी, लेकिन देखें हमारे जख्मों पर नमक पाशी करते हैं जब ये कहते हैं तालिबान से मुज़ाकरात होंगे, इसलिए होंगे कि इनकी काबीना में तालिबान के ले पालक गुंडे बैठे हैं, पंजाब के अंदर मरकज के अंदर वो लोग बैठे हैं जो इन दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं है इस मामले पे। मैं मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे मौजूदा हुकूमत से कोई 0.1% की भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये तो आई उनकी गारंटी पे है, ब्रदर मुल्क इन्हें इसी गारंटी पे लेके आया था कि आप यहाँ पर सल्फियत का इनकलाब लेके आएंगे, आप इस मुल्क को इजिप्ट, इस मुल्क को सीरिया, इस मुल्क को लीबिया बनाएंगे, तो ये तो इस मुल्क को लीबिया बनाने के लिए आए हैं, पाकिस्तान के लिए यहाँ पर नहीं आए। इसके लिए कौम को सोचना है, कौम के पास एक ताकत वोट की ताकत होती है, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर मकसद है हमारा इलेक्शन जिस तरह डिस्प्यूटेड रहा और जिस तरह रिगिंग की गई, जिस तरीके से प्री प्लान्ड प्रोफेशनल रिगिंग 2013 के इलेक्शन में की गई है, इसकी मिसाल माजी में भी आपको नहीं मिलती। माजी में शायद चंद सीटों के हवाले से रिगिंग होती थी, पकड़ी भी जाती थी। इस मरतबा बाकायदा सूबा सूबा और मरकज मरकज के लेवल तक गवर्नमेंट बनाने के लिए रिगिंग की गई है और बड़े प्रोफेशनली की गई है। अब ना वो इलेक्शन कमीशन के हमारे काबिले एहतराम चीफ साहब मौजूद रहे, वो भी रिजाइन करके चले, देखे ना कितनी बदकिस्मती रिगिंग हुई, उन्होंने उन इल्जाम को फेस करने की बजाय रिजाइन किया, घर चले गया कि मैं मुतनाज़ हो गया था। आपको ये रिजाइन पहले दे देना चाहिए था इलेक्शन से, आपको पता था कि ये हो रहा है, आपको डिक्टेशन मिल रही थी, हमें पता है हलकों के अंदर बेबस थी इंतजामिया, उनके ऊपर से डायरेक्शन आ रही थी कि आप इन लोगों को सपोर्ट करें। आपने एक सोच को प्रमोट करके अब पाकिस्तान में अपने आगे खड़ा कर दिया, वो तमाम मुहिब वतन लोग वो आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जिन लोगों ने इस मुल्क को बनाया था, जिन लोगों के बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, असलाफ ने कुर्बानियां दी हैं। हम तो मेरा भाई बाहर से तालीम हासिल करके पाकिस्तान आ जाते हैं सिर्फ इसलिए कि टू सर्व दिस कंट्री, कि हम भी शायद कुछ इस मुल्क के लिए कर सकें। इस और उसकी बुनियादी वजह बचपन से घर में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि फलाना रिलेटिव शहीद हुआ माइग्रेशन में, मेरी नानी आज अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं, अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी सेहत वाली अता फरमाए, मेरे नाना भी बाकायदा हयात हैं, उनके वालिद उनके भाई शहीद किए गए, ड्यूरिंग माइग्रेशन, और वो आज 80-85 साल की खातून आज रोती हैं जब वो मीडिया के ऊपर बैठती हैं, जब वो चैनल्स देखती हैं, जब वो अखबार पढ़ती हैं, वो रोती हैं। वो कहती हैं कि मैंने अपने बाप की, अपने भाई की, अपनी बहनों की कुर्बानी इस पाकिस्तान के लिए दी थी, जिस पाकिस्तान में आप उन लोगों को जो पाकिस्तान बनाने वाले हैं उनके आप गले काटें, जिस पाकिस्तान में आप उन लोगों को जिनकी तीन तीन नस्लों की कुर्बानियां उनके गले काट के, सिर्फ इसलिए कि वो पाक फौज के जवान थे, उनके गले काट के आप उनके साथ फुटबॉल खेलें, जिस पाकिस्तान में आपके किसी शहर के अंदर हमारे पुलिस वाले को या हमारे किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी के जवान को सिर्फ इसलिए उसके ऊपर जुल्म व सितम किया जाए, उसके जिस्म के ऐसे किए जाएं कि उसने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्दी पहनी हुई है, वो रोते हैं वो लोग जो आज जिंदा हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी आंखों से बनते हुए देखा, वो रोते हैं वो लोग। और ये चीज़ हमारे लिए लम्हा फिक्रिया। हमारे मुल्क में इसराइल खेल रहा है, हमारे मुल्क में हिंदुस्तान खेल रहा है, हमारे मुल्क में अमेरिका खेल रहा है, हमारे मुल्क में हर वो ताकत खेल रही है जो इस्लाम मुखालिफ ताकत है। हमारे मुल्क में हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क खेल रहा है, वो अपनी जंग इस मुल्क के अंदर लड़ रहा है, अपना अपने मुल्क का मसलक वो हमारे मुल्क में मुसलत करना चाह रहे हैं। अकलियत की राय को अहमियत ही नहीं दी जाती। भाई हम तो ये कहते हैं हर मजहब को, हर मसलक को अपनी मर्जी के मुताबिक इबादत का हक है, जिंदा रहने का हक है, अपना त्यौहार मनाने का हक है, अपनी मर्जी के मुताबिक अपने मजहब या मसलक की इंटरप्रिटेशन का हक है। ये हक अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान या शरी तौर पर किसी को नहीं है कि मैं आपके सर के ऊपर गन पॉइंट रखे कहूँ कि जनाब आपने मेरे साथ एग्री करना है, अदरवाइज मैं तो आपको मार दूंगा क्योंकि आप सही नहीं है। ये ना इस्लाम कहता है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है। ये मकसद है अगर आप इजमाली सा जो खाका था इस तमाम सूरत हाल का, और इसमें दुआ की जा सकती है, मकसद है सब लोग कोशिश भी कर रहे हैं जो अपनी अपनी कैपेसिटी में हैं, हम दुआ कर सकते हैं। ये असल काम अब नई जनरेशन का है, हमारे बुजुर्ग अब बुजुर्गों में वो हिम्मत भी नहीं रही, वो हौसला भी नहीं रहा। जिन लोगों ने बनाया था उन्होंने 65 साल इस मुल्क को लुटते देखा। आप एक एक आदमी जिसने एक घर बनाया हो अपनी मेहनत के बाद, 10 साल सिविल सर्विसेज में रहा हो, 15 साल सिविल सर्विसेज में रहा हो, उसने घर बनाया हो, घर की तजीन और आइश की हो, उसका घर आप लूट के ले जाएं डाकू, उसकी इज्जत भी ले जाएं, उसके घर के सामान ले जाएं, तो वो शख्स जिंदा नहीं रह सकता। तो इस पाकिस्तान को बनाने के लिए 10 लाख बुजुर्गों ने, माओ ने और बहनों ने अपनी इज्जत की कुर्बानी दी है, जान माल की कुर्बानी दी है, अपने हजारों मुरबा जमीनें छोड़ के आए हैं। वो जमीन जिसे हमारे पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि जो अपनी जमीन को मां का रुतबा दिया जाता है, कि यानी जमीन का तकद्दस इतना, वो जमीन छोड़ के वो इस मुल्क को आजाद पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए वो इस मुल्क में आए, आगे हमने इस पाकिस्तान में उनको दिया क्या? आज वो आज आप जाएं एक साइड के ऊपर हमारी अशराफिया, और आप ये चीज भी चेक कर लें पाकिस्तान की जो मौजूदा अशराफिया है इनके अबाउ अजदाद मोस्ट ऑफ देम ये उस वक्त भी बरतानवी साम्राज्य के जेर सरपरस्ती जेर साया बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से ये लोग जिंदा भी रह रहे थे, ये लॉर्ड्स भी थे, ये जागीरदार भी थे, ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, ये बिजनेसमैन भी थे, इन्हें ताजिए बरतानिया की तरफ से शाही एजाजात भी अता किए गए, अलकाबात भी दिए गए। लेकिन वो पाकिस्तानी जो कायदे आजम अल्लामा इकबाल की आवाज़ पर लब्बैक कहता हुआ पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए इस पाकिस्तान में आया, उसे कुछ नहीं मिला। ये सिंपली डाइंग। आप ऑनेस्टली चूंकि हम उस क्लास से बिलोंग करते हैं जो मिडिल क्लास है, आप आए दिल खून के आंसू होता है। इन लोगों को क्या पता जिनके एसेट्स 10-10 खरब में हैं, जिनके महल अब मुझे एक बात बताएं कि एक कोई शख्स है जिसने एक घर बनाया हो, एक जमीन ली हो और उसके ऊपर उसने बेतहाशा मेहनत की हो और उसकी औलाद, वो शख्स जिंदगी में जमीन तो नहीं छोड़ेगा। अगर वो अपनी औलाद को अपनी खुशी से ये कहे कि तुम इस महीने इसको बिगड़ने दो, तुम पाया चले जाओ, और वो शख्स फिर लोगों के सामने ये कहता फिरे कि मेरा कंसर्न है इस जमीन से, मेरा ही ख्याल जचता। हमारे पाकिस्तान की आप सियासी क्यादत देख लें, मकसद है जो पिछले 30-30 साल से इक्तदार में है, इल्ला माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो अच्छे प्रमोट कम हो सके, वो शायद आप उंगलियों पे दिन 10 उंगलियों पे शायद पूरे नहीं आएंगे जो बड़े वेल नोन फिगर्स आए हैं। लेकिन दूसरे लोगों की फैमिलियाँ आप देख लें, कोई कोई इंडस्ट्रियल आइकॉन है, इंडस्ट्रियल्स और वो प्रॉपर्टी मैटर्स का आइकॉन है इंग्लैंड के अंदर, किसी के सऊदीया में बिजनेस है, किसी के मलेशिया में बिजनेस है, कोई सिंगापुर में बिजनेस कर रहा है, कोई अमेरिका में बैठा है. आई मीन दे हैव नो कंसर्न विद पाकिस्तान. आप पाकिस्तान के टॉप 50 फैमिलीज के एसेट्स पाकिस्तान ले हैं, पाकिस्तान का कर्जा, पाकिस्तान के अगले 20 साल के मसले खत्म हो जाएंगे. मैं आपको बात बताऊं, मैं गया, मेरा इत्तेफाक हुआ जौम आज़ादी गिलगत बल्तिस्तान का था, मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन के प्रो बैनर के अंडर हमें उन्होंने वहां पे इनवाइट किया. मैं गया, बाकी सारी जमातों की नुमाइंदगी वहां पर मौजूद थी पाकिस्तान की, सब लोग गए वहां पे. मैं वहां पे खुद अपनी आंखों से विजिट, अपनी आंखों से देखा दरिया में सोना आता. इससे ज्यादा ट्रेजेडी हमारे साथ क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला ने हमें, पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जिसे चार मौसम दिए, जिसका एग्रीकल्चर सिस्टम इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट, इट्स इनफैक्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है, इट्स नॉट वन ऑफ द बेस्ट, इट्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड. आपकी जरी इजनास देख लें, आपके फल देख लें, आपकी मौसमी तगैरात और तब्दीलियां जितनी भी हैं वो आप देख लें, आइडियल हैं जो भी, जो आपकी चीज भी फील करें. पाकिस्तानी कौम देख लें, इसकी लेबर को दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाकर सबसे मेहनती कौम है. लेकिन आप गिलगित में, यानी रोना दिल खून के आंसू होता है कि वहां पे जहां पे जमीन में कॉपर है, पहाड़ों में कॉपर है जो अगले 100 साल की दुनिया की जरूरियात पूरा करेगा, जहां मादनी आते हैं, जहां पत्थर है, जहां हीरे हैं, जिसके दरिया हकीकी मानों में, एक तो मुहावरा होता है कि सोना उगलना, मैं आई हैव सीन दिस विद माय ओन आईज, लोगों ने वहां पे प्राइवेट तौर पे अपनी छाननियां लगाई हुई और वो जिस भी सिस्टम के मुताबिक उसे वो मकसद बाकायदा डाल के फिर वो सोने की शेप देते हैं, वहां पे लोग बैठे हैं. तो और उस सूबे की कैफियत आप देखें, उसके पास एक नेशनल असेंबली की सीट नहीं है, उस सूबे की आप, उस सूबे में हॉस्पिटल्स नहीं है. हम वहां थे तो हमें पता लगा कुछ लोगों की डेथ, एक दो साथियों की डेथ हो गई वहां पे, इसलिए कि वो हॉस्पिटल नहीं आ सके, रास्ता साफ नहीं था. यानी डूब मरना चाहिए हमारी इन हुकूमतों को, जो कभी जिन्होंने हकूक बलोचिस्तान के नाम पे, नाम पाक पिछले 65 साल से हकूक बलोचिस्तान के नाम पर बलोचिस्तानियों का इस्तेहसाल हो रहा. आप सिंध से आप वाया सखर जाएं, आप जरा बलोचिस्तान एंटर हो, सिंध तक का रोड और फिर बलोचिस्तान में एंटर होते ही आपको पता लग जाएगा कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है वहां पर कि बलोचिस्तान कहां से स्टार्ट हो रहा, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा. वहां के लोग सही रो रहे हैं और फिर उन्हें एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है, उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है इंटरनेशनल ताकतें, उन्हें इसराइल कर रहा है, उन्हें इंडिया कर रहा है, यहूदो अनूद कर रहे हैं, उन्हें अमेरिका कर रहा है और अपने पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहा है. गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप देखें, आप के खैबर पख्तूनख्वा में देखें, आप कराची में देखें, मकसद इस मॉडर्न दौर के अंदर, इस सिविलाइज दौर के अंदर पाकिस्तान में नो गो एरियाज हैं. हमारी वहां पर फ्लाइट लेट हो गई, आप यकीन करें 3 दिन हम इसलिए नहीं आ सके कि जी कोसान और चलास में वो दहशतगर्द और तालिबान बैठे, हम बाई रोड नहीं आ सकते. दिस इज ट्रेजेडी इन पाकिस्तान. आर्मी ने और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने और हमारी हुकूमत की विल थी कि आपने सवाल क्लियर करना है, आप देखें क्लियर नहीं हुआ सवाल, क्यों नहीं जाते. मैं तो, मेरा सवाल यह है कि हमारी पाक, मैं तो बल्कि ये मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, हमारी अफगानिस्तान पॉलिसी अगर चेंज ना हुई तो खाकम बदहन ये मुल्क टूटने की तरफ जा रहा है. आज हम बलूचिस्तान में, मैं चंद दिन पहले होके आया, वहां पर जाते हैं जिस वक्त प्रोग्रामों के सिलसिला में जाते हैं, पार्टी प्रोग्राम्स के ऊपर, आप यकीन करें मुंतजमीन हमारे कान में पहले ये बात कहते हैं कि जनाब यहां पर ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत की बात ना कीजिएगा. इज्तमा के अंदर 60-70% लोग ऐसे बैठे हैं जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं. दिस इज ट्रेजिडी. लेकिन वहां पर मकसद है, अरबों रुपया भी लगा दिया गया सरदारों को, अमीरों को, वडेरों को, नवाबों को नवाजा भी गया, उनका 50-50 गाड़ियों के कॉन्वॉय भी चलते हैं गनमैनों के, उनके तमाम नस्लें भी इस मुल्क से बाहर बैठी हैं. और इस मुल्क के अंदर मकसद है, वो जो गरीब बलोच था, जो गरीब सिंधी हरी है, जो गरीब पंजाब का जमींदार है, जो बेचारा मेहनती गिलगित बल्तिस्तान का आदमी है, जो खैबर पख्तूनख्वा का गैरतमंद पठान है, उसको क्या मिला? लाशें, इस्तेहसाल. फिर उसके बाद अगर आप बात करें तो पेट, भाई पेट का दोजख, जब इंसान अपनी आंखों से अपने बलकते हुए बच्चों को देखता ना, जिनको एक टाइम रोटी नहीं मिलती, जिनके घर में चूल्हा नहीं है, जिनके घर के गैस का सिलेंडर नहीं भर सकता, जिनके पास कन्वेंस नहीं है, जिनकी आंखों के आगे रोज उमर आके बच्चे ग्रैंड क्रूजर्स के ऊपर पुरतायुश अब इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं तो उस इंसान के अंदर फिर इंसानियत की रमक खत्म होती जाती है, क्योंकि इंसान अपनी पैदा की हुई औलाद के लिए पूरी दुनिया से टकरा जाता है। और जब इंसान एक साइड पे देखता है कि मेरे सामने 2 एकड़ 4 एकड़ का घर है और इस आदमी के बच्चे दुनिया की हर आसाइश हासिल कर रहे हैं और मेरा बच्चा एक वक्त की रोटी के लिए बलक रहा है, तो डरे उस वक्त से जब इस पाकिस्तान कौम का हर आदमी सड़कों पर आ जाएगा। मैं आपको बताऊं, हालात इतनी स्पीडली स्पीडली उस चीज की जानिब जा रहे हैं, फिर ना कोई महल रहेगा, ना कोई कोठी रहेगी, ना पोस्ट सोसाइटीज रहेंगी। ये लोग फिर दरिंदों की तरह ये लोग इन कोठियों के ऊपर दावा बोलेंगे, फिर इन लोगों का इस अशराफिया के तबके का इस्तेहसाल भी किया जाएगा, इनका कत्लेआम भी किया जाएगा। और उसी वक्त से डरते हुए हमारी रिक्वेस्ट है कि हुकूमत को चाहिए कि मुनासिब इकदाम करें। भाई देखें, एक तो आपके सवाल में एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ आई जिसकी तरफ मैं लाजमन इशारा मबजूल करूँगा, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई डेफिनेटली वॉन्ट कि आप इसे दोबारा ना यूज़ करें। वो ये है कि अहले सुन्नत के हवाले से सऊदीया की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, चूंकि अरबी की एक लुगत है अल हुक्मो लिल कुल। पाकिस्तान के रहने वाले लोगों को पाकिस्तानी इसलिए कहा जाता है कि अक्सरियत पाकिस्तानियों की है। अगर पाकिस्तान में कोई इंडियन रहने के लिए आ जाए तो आप उसे पाकिस्तानी नहीं कहेंगे। यहाँ पर अफ्रीकन्स रहते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ नेशंस के लोग को पढ़ाई के लिए आया, को बिजनेस के लिए आया, आप उन्हें पाकिस्तानी कह के नहीं बुलाते अनटिल एंड अनलेस ही इज़ अ पाकिस्तानी सिटीजन। और उसके लिए फिर वो बेसिक क्राइटेरिया क्या आ गया कि पाकिस्तानी सिटीजन। अब यहाँ पर हमारी हिंदू कम्यूनिटी भी है, यहाँ पर हमारी क्रिश्चियन कम्यूनिटी भी है, यहाँ पर हमारी सिख कम्यूनिटी भी है, यहाँ पर और भी कम्यूनिटीज़ हैं। उन लोगों के नाम के ऊपर इसे इस मुल्क के लोगों को कॉल नहीं किया जाता ओवरऑल, बल्कि उन्हें भी पाकिस्तानी ही कह के कॉल किया जाता। अब असल चीज़ यह है कि जब आप अहले सुन्नत की बात करते हैं तो पाकिस्तान में मेजॉरिटी बिल इत्तफाक ये अहले सुन्नत व जमात की है जो हनफी हैं। ये एक साजिश की गई कि पाकिस्तान का वो मिलिटेंट तबका, एक मखसूस सेक्ट है, मैं उसका नाम नहीं लेना पसंद करता क्योंकि मे बी ये बात दे विल ब्लेम अगेन के मैं को फिरका वारियत की बात करता हूँ, हालांकि रियलिटीज़ की बात करना फिरका वारियत नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं उनका नाम नहीं लेता। उस फिरके की एक मखसूस कलदम जमात है जिस जो किलिंग के लिए पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, उसने अपना नाम अहले सुन्नत वाल जमात रख के अपने आप को सुन्नी कहलवाना शुरू कर दिया। अब से चंद साल पहले तक पाकिस्तान में सुन्नी सिर्फ हकीकी सुन्नियों को, जो औलिया अल्लाह के, जो दरबारों के मान दरूद व सलाम के कायल थे, जो इल्मे गैब के कायल थे, जो नबी के नूर होने के कायल थे, जो नबी के आम बशर से बुलंद होने के कायल थे, जो फिका हनफी के मुकल्लद थे, ये बेसिक शराइत थी ना। आप खाली फिका हनफी का मुकल्लद क्या कि तो अपने आप को सुन्नी नहीं कह सकते। चलिए अगर आप कह भी लें तो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड फिगर्स पाकिस्तान में जिन सुन्नियों की, या जिन्हें अब बरेलवी कहा जाता है उर्फ़े आम में, उन जिन सुन्नियों की मैं बात कर रहा हूँ वो फिका हनफी के मुकल्लदीन में भी अभी अक्सरियत में है। अगर आप उस रेशियो को डिवाइड करें कि फिका हनफी के मुकल्लदीन कौन से 2 सेक्ट हैं पाकिस्तान में, तो आप मैं इनकी जबान मैं खुद बोल देता हूँ, एक सुन्नी बरेलवी, दूसरा सुन्नी देवबंदी। अब बात यह है कि सुन्नी बरेलवी अभी भी 70% है, 75 हो सकते हैं, 70 से नीचे नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि ये कहां का कानून है, ये कहां की लुगत है कि आप 20% को हमारे पे मुसलत करके उन्हें सुनी कहना शुरू कर दें। अगर उन्हें अपनी सेपरेट आइडेंटिफिकेशन चाहिए तो उनकी आइडेंटिफिकेशन 60 साल उनके पास रही है, उनके सेक्ट के नाम से उनको कॉल किया जाता था, उनको बुलाया जाता था। आज पाकिस्तान के तमाम मीडिया से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप शिया की बात करते हैं तो साथ सुन्नी का लफ्ज ना इस्तेमाल किया करें, क्योंकि शिया और सुन्नी तो दोनों मजलूम है इस एक तबके से, दे हैव नथिंग टू डू विद सुन्नियत। अगर आप चले जाएं डेरा गाजी खान के मिलाद शरीफ के जुलूस के बारे में, अगर आप चले जाएं फैसलाबाद के मिलाद शरीफ के जुलूस के हवाले से, अगर आप चले जाएं दाता साहब के बम धमाके से, अगर आप चले जाएं हजारा कम्युनिटी के कत्लेआम से रिलेटेड जो वहां पर जुल्म इंसानियत सो जुल्म किया गया वहां पर, वहां से चले जाएं, अगर आप आ जाएं साना रावलपिंडी के हवाले से, तो आप देखें कि एक साइड पे कभी फरीक अव्वल शिया होगा, कभी सुन्नी होगा, लेकिन फरीक दोम हमेशा एक ही है। तो ये मकसद है शिया और सुन्नी वाली बात, इसमें नहीं, मेरा ख्याल है उनको उनके सेक्ट से बुलाया जाए तो दैट विल बी बेटर। और दूसरी, जहाँ तक आपने इन तीन ममालिक का तذکرہ किया था, तो देखें, मैं आपको बड़े हकायक मुखलसाना तरीके से बतला रहा हूँ, मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ अभी तक दोनों ब्रादर इस्लामी ममालिक को विजिट करने का, ना ईरान का और ना सऊदी अरब का। हाँ, अलबत्ता अमेरिका मैंने एक मरतबा विजिट किया, दैट वाज बैक इन 1998, एंड आई कम टू द कंक्लूजन दैट दिस विल बी द लास्ट कंट्री आई वुड एवर कम आई वुड एवर गो देयर। मैं वहीं से मकसद 7-8 दिन के बाद आ गया। मुझे उस मुल्क की तहजीब, सकाफत एंड देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स इस्लाम, दैट वाज सिंपली रबिश एंड डिस्गस्टिंग, सो आई डोंट लाइक दम। मैं मकसद वहां से आ गया। ये जो इंटरफेरेंस की बात है, अमेरिका एक सुपर पावर है, उसके अपने मुफादात हैं, पूरी दुनिया में उसके मुफादात हैं, पाकिस्तान में उसके मुफादात हैं, क्योंकि नई उभरती हुई ताकत, सुपर पावर पावर जिसे कहा जा रहा है, वो चाइना है। प्लस रशिया भी दोबारा रिवाइव कर रहा है, वो रिवाइवल के ऊपर आ रहा है। पाकिस्तान का हदूदरबा, पाकिस्तान का महले वकूई इतना क्रूशल है कि इस लिहाज से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस 10 टाइम्स बढ़ जाती है। अब अमेरिका के इस रीजन में स्टे करने के लिए उसकी उसकी हाकमियत पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान अमेरिकन लॉबी के हाथ से निकल जाए, तो अमेरिकन लॉबी के पास फिर यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बाकी बच जाती। देन ही कांट, आई मीन अमेरिका कांट स्टॉप चाइना और रशिया। ये तो आप इन सिंपल कह सकते हैं, आप तफसील में जाएं तो बहुत तवील हो जाएगी। तो यस, ऑब्वियसली दे आर प्लेइंग देयर रोल, दे डोंट वांट पाकिस्तान टू बी ए स्टेबल कंट्री, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान डीस्टेबल ही रहे, और डीस्टेबलाइज कर भी रहे हैं, ताकि इसकी पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत रहे और हम इसे अपने इशारों पर, और फिर इन हुक्मरानों को जो कि इन्हीं के लाए हुए लोग हैं, इनको अपने इशारों पर नचा भी सकें। दूसरी बात आ गई कैटेगोरिकली ईरान के हवाले से। मेरा इस हवाले से अभी तक तो किसी किस्म का कोई इत्तफाक नहीं हुआ कि मैंने अहले तशय्यो की कोई ऐसी मैसिव बिल्डिंग्स देखी हों, या ऐसे मदरसे देखे हों, या ऐसी उनकी यूनिवर्सिटीज़ देखी हों जहाँ के पीछे नाम आता हो कि इनकी फाइनेंसिंग ईरान की तरफ से आई है। मकसद अहले तशय्यो को अगर ईरान के साथ नथी भी किया जाता है, तो चूंकि वहाँ पर अक्सरियत अहले तशय्यो की है, तो उनके एक हमदर्द कंट्री के तौर पर किया जाता है। अदरवाइज मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम टेलिंग यू विद ट्रू ऑनेस्टी, मेरे सामने कम अज कम मैंने अपनी आंखों से, आई हैव नॉट सीन दैट। सऊदी अरब का जहां तक ताल्लुक है, सऊदी अरब के हवाले से आप देखें, पाकिस्तान में अपने मसलक की सोच को उजागर करने के लिए बाकायदा फंडिंग और फाइनेंसिंग की गई है। आप देखें, एक मखसूस सेक्ट है जिसका मदरसा मुरबों पे, या जिसकी यूनिवर्सिटी मुरबों के ऊपर आज बनना शुरू होती है, 3 माह में कंप्लीट हो जाती है। और हम ऑन द अदर हैंड, जो पाकिस्तान की दीगर कम्युनिटीज़ हैं, जो दीगर सेक्ट्स हैं, वो बेचारे चंदा मांग मांग के, कभी मुखय्यर हजरात से अपने अपने सेक्ट के लोगों से रिक्वेस्ट करके, कभी कुछ एनजीओज़ हैं जो मकसद है जज्बा खैर सगाली के तौर पे को थोड़ी बहुत कर दें। इन सेक्ट्स के मदरसे 20-20 साल में बनते हैं, एक सेट का मदरसा 1 साल में बन जाता। प्लस इसके लिए आपको ये भी ज़रूरत है कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अदाद व शुमार चेक करें कि पाकिस्तान में ड्रामेटिकली किस सेक्ट की मदारस यूनिवर्सिटीज और मसाजिद की तादाद को बढ़ाया गया है ड्रामेटिकली। क्योंकि अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें पाकिस्तान की आबादी के तनासुब से, तो जो आपके पास मसाजिद की, मदारस की, यूनिवर्सिटीज की तादाद थी, उसी के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन मकसद है, सवाल है, हमारा भी सवाल होता है हुकूमती इदारों से, हम बार बार सुनते हैं फलाने से मदद आई, फलाने से मदद आई। मसला ये है कि हम तो ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं जहाँ पे बाकायदा दहशतगर्दी की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जहाँ पर कलदम जिहादी तनजीमों के सरबराह जाकर तकरीरें भी करते हैं, उनकी अरबों रुपये की फंडिंग कहाँ से होती है? हमें तो हमेशा ये बताया गया सऊदी अरब से होती है, आखिरी सिरा भी सऊदी अरब की जानब ही जाता है। क्यों? कि वहां का सेक्ट ये है। हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं मुझे नथिंग टू डू विद सऊदी अरब, मेरे इनके साथ कोई पर्सनल क्लैशेज नहीं है, ना मेरा को मुफाद उनसे वाबस्ता, और मेरा नहीं ख्याल को उनका भी मेरे में उनको को प्रॉब्लम होगा उन्हें मेरे साथ। लेकिन मसला ये है कि वहां के ऊपर जो गवर्नमेंट है, उसके मसले को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आज तुर्की चला जाऊं, मैं सुबह शाम चला जाऊं, सुन्नी स्टेट है, शाफी हैं, सुन्नीज हैं, मैं वहां पे चला जाऊं, तो मेरा वहां जाना तो ठीक है, दैट्स फाइन। मैं वहाँ पे जाऊँ, किसी हेल्दी एक्टिविटी का पार्ट बनूँ, कुछ सीख के आऊँ अपने पाकिस्तान के लिए, आके उसकी बेटरमेंट के लिए रोल प्ले करूँ, को एजुकेशन लूँ, को उनका सुपर स्ट्रक्चर लूँ, तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर मैं वहाँ से आता हुआ 10-10 अरब रुपया, 20-20 अरब रुपया भर के ला के, तो यहाँ पर अपने अपनी सोच के मदरसे बनाने शुरू कर दूँ, यूनिवर्सिटीज़ बनानी शुरू कर दूँ, फिर जहाँ पर मेरी अपनी निजी मलेशियाज़ बननी शुरू हो जाएँ, तो फिर उसके ऊपर तो भाई सीरियस तहफ़ात हैं। और सबसे अहम बात जो है, बदकिस्मती से अब तो ये वही सऊदी अरब है, अब देखें मैं बड़ा अफसोस होता है, ये वही सऊदी अरब है जिसके बारे में पाकिस्तानी कौम एक लफ्ज़ सुनना बर्दाश्त नहीं थी करती, और सिर्फ अब से चंद साल पहले तक एक लफ्ज़ सुनना यानी नामुमकिन था किसी आदमी के लिए कि बैठ के सऊदी पॉलिसी को भी क्रिटिसाइज कर देना। लेकिन आज ये वही सऊदी अरब है, दिल हमारा खून के आंसू रोता, ये वही सऊदी अरब है जिसके ऊपर अब पाकिस्तान की मेजॉरिटी उंगलियां उठा के बैठी हुई है। पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि इस इलाका के अंदर और पूरी दुनिया में अमरीकी मफादात का तहफ़ सऊदी अरेबिया करता है। मैं अपनी बात का अख्ताम इस ट्रेजिडी पे करूंगा कि सीरिया पे अटैक की बात हुई। सबसे पहले तो पूरी दुनिया में बड़ा ववेला मचाया गया कि जनाब वो बशार अल असद साहब ने वेपन यूज किए हैं मैस डिस्ट्रक्शन के, और सारे जनाब केमिकल वेपन यूज किए हैं। यूनाइटेड नेशंस की टीम गई और उसने कहा नहीं, इन्हें नहीं किए इन्होंने। अब सवाल यहां पे पैदा होता, फिर किसने किया ये, और गवर्नमेंट के मुखालिफ कौन है? गवर्नमेंट के मुखालिफ अमेरिका है, सऊदी अरब है, जिन ग्रुपों को गवर्नमेंट का सफारतखाने बंद कर दिए गए हैं, और ये जो निजी मलेशिया लड़ रही है, जो मिलिटेंट्स वहां पे लड़ रहे हैं, जो मज़ारात को शहीद कर रहे हैं, जो असहाबे रसूल के मज़ारात को शहीद कर रहे हैं, जिन्होंने वहां पर जो जुल्म रचाया उसका इंसान सोच तसव्वुर नहीं कर सकता, ठीक है, वो लोग वहां पर उनको फंडिंग ऑन कर रहा है। इसी सऊदी अरब ने यह कहा कि अमेरिका अटैक करे सीरिया पे एंड हम तमाम के तमाम अखराजात बर्दाश्त करेंगे। दिस इज द बिगेस्ट ट्रेजिडी एंड द बिगेस्ट शेम फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट फॉर सऊदी अरेबिया, फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, कि हम एक मुसलमान को मारने के लिए हम यहूदो हनूद को कह रहे हैं कि आप आके उसका बेड़ा गर्क करें, आप बम्बारमेंट करें, आप वहां मासूम लोगों का खून बहाएं, और हम आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। दिस इज अ ट्रेजिडी, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। पाकिस्तान में कोई शिया सुनी प्रॉब्लम ना था ना है। हमारा जो भी मसलकी फिकही इख्तलाफ मौजूद है वो अपनी जगह पे है, और हम ये कहते हैं कि हर मसलक को ये हक है कि वो अपने अकीदे पर रहते हुए जिंदगी गुजारे, ठीक। मैं ये कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ कि अहले तशय्यु की किलिंग के अंदर, उनकी इबादत गाहों पर हमलों के हवाले से, उनके उलमा के शहादत के हवाले से, उनके जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं उस हवाले से, अहले सुन्नत का कोई रोल नहीं है। और हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं ऐसे हर उस एक्ट को जो कि अहले तशय्यो के खिलाफ उठाया जा रहा है, और इसी तरीके से हम कंडेम करते हैं हर वो स्टेप जो किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ हो वो, इवन मैं तो ये कहता हूँ अगर वो अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट या अहले देवबंद के खिलाफ हो तो हम उसे भी कंडेम करते हैं। किलिंग इज नो वे, इट्स नो वे फॉर एनीवन। तो यहाँ मकसद है, मैं तो सिर्फ ये वाजह करना चाहूंगा कि ना पहले था ना अब है, जो अब जो इख्तलाफात मौजूद हैं फिकी वो अपनी जगह पर हैं, वो रहेंगे, वो मुसल्लम हैं, लेकिन हमें उसके साथ हम पहले भी जिंदा रहे, हमने आइंदा भी जिंदा रहना है। ये एक मीडिया के जरिए एक शिया और सुन्नी लड़ाई बना दी गई है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जिनके साथ असल लड़ाई है उनका नाम डाला जाए और लफ्ज़ सुन्नी बाहर निकल जाए। मैं इस मुल्क में इंकलाब, पीसफुल इंकलाब आना नहीं है इस मुल्क में, आई एम रियली सॉरी टू से, अवाम का इस्तेहसाल जिस लेवल पे पहुंच चुका हुआ, जब लोगों के हाथ अमलाक आएंगी मैं नहीं समझता फिर कोई पीसफुल रहेगा। मुझे खौफ है उस दिन से, मैं डरता हूं उस दिन से, क्योंकि हम नीचे रहते हैं, हम लोगों को देख रहे हैं जो अपने बच्चों को बेच रहे हैं, रो रहे हैं सड़कों पर बैठ के, जिनके घरों में सर्दियों में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है। तो मुझे तो इस मुल्क में इंकलाब इज नो वे। इसका हल सिर्फ एक है कि हुकूमतों के पास इसका हल नहीं, क्योंकि हुकूमतों की विल ही नहीं है। अदरवाइज मैं आपको ऑनेस्टी से बताऊं, अगर पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत मौजूदा साबका या आने वाली अगर चाहे, एक महीने के अंदर ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा। एक महीने में पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा। और वो उसका तरीका क्या है? सिंपल, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक टेबल पर बिठाया जाए, उनके हेड्स को, तमाम चैनल्स के कैमरा उनके ऊपर फोकस किए जाए, एक उन्हें सवालनामा दिया जाए, दहशतगर्दी के हवाले से आपका क्या मौकफ है, तालिबानाइजेशन के हवाले से आपका क्या मौकफ है, फिरका वारियत के हवाले से आपका क्या मौकफ है, पाकिस्तान के ड्रोन हमलों के हवाले से आपका क्या मौकफ है, मौकफ आगे लेके वन वन लाइन, उसके बाद उसका सोल्यूशन ले लें, क्या ड्रोन गिराना चाहिए, क्या ऑपरेशन होना चाहिए या मुजाकरात होने चाहिए, मैं दूसरी ऑप्शन भी दे देता हूं, ऑपरेशन होना चाहिए या मुजाकरात होने चाहिए, उसके बाद उनसे पूछ लिया जाए कि क्या कानून तोड़ने वालों को सरेआम सजाएं मिलनी चाहिए, ये आप हाँ आप तीन सवालनामे दे के मीडिया के, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं अक्सर पार्टियों के सरबराह वहीं से बैकआउट कर जाएंगे, आएंगे न्यूज इजलास में, इसलिए कि वो इन कैमरा कोई और बात करते हैं, बाहर आके वो पाकिस्तान के लोगों की आवाम की रग के मुताबिक अपनी बात करना शुरू कर देते हैं, वहां पर आपको जवाब मिल जाएगा, जब आपको जवाब मिलेगा वो जो भी गवर्नमेंट हो, ये मौजूदा गवर्नमेंट के पास भी अपॉर्चुनिटी है, वो जब जवाब मिलेगा तो जब हमारा प्राइम मिनिस्टर फिर खड़ा होकर ड्रोन गिराने का ऑर्डर देगा ना जनाब, तो पूरी कौम उसके पीछे खड़ी होगी, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अमेरिका को यह पैगाम जाएगा कि अब यह कौम ड्रोन गिराने के लिए एक जगह पर खड़ी होगी, इसकी तमाम पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टी एक पेज के ऊपर आ गई है, ठीक है, इसकी तमाम की तमाम पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टीज सेक्टेरियन वायलेंस के हवाले से एक स्टेज पे एक पेज के ऊपर आ गई है, एक इशू के, तो ये अगर चाहें, और उसके बाद आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कन्वे करें अमेरिका को कि दिस इज इट, नो मोर ड्रोन, नो मोर इंटरफेरेंस इन आर इंटरनल मैटर्स, दूसरे मुल्कों को भी आगाह करें कि इनफ इज इनफ, अब अगर किसी मुल्क से फंडिंग, आप बलोचिस्तान में आप इंडिया को कहें वाजिया तौर पर बादशाह कि दिस इज इनफ ऑफ इट, अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब या आपकी और हमारी जंग है या बलूचिस्तान के में से अपने एजेंडों को बाहर निकालें, वहां पे आप फंडिंग करना बंद करें, मैं आपको एक महीने में पाकिस्तान समर जाएगा, एक महीने में ये इसके लिए कोई शटल कॉक किस्म की मकसद आपको रॉकेट साइंस नहीं चाहिए इसके लिए, सिंपल आपके सामने मैंने इसका हल बता दिया, इसलिए कि इज्तमाइयत का प्रेशर होता है, इनफरादियत का प्रेशर नहीं होता, बिल्कुल जरूर देता है। दूसरा हाल इसका यह है कि अगर हुकूमत नहीं करती तो फिर आवाम को खुद अपना हक लेने के लिए पुरअमन तरीके से सड़कों पर निकलना होगा, और उसके लिए एक तो भी ये बलदियाती इलेक्शन का मौका आ रहा है, मैं तो चाहूंगा कि लोग पहले मौके के ऊपर ऐसे लोगों को मुंतखब, उनसे पूछा जाए कि भाई आपकी ड्रोन पॉलिसी क्या है, आपकी तालिबान पॉलिसी क्या है, आपकी दहशतगर्द पॉलिसी क्या है, आपकी फिरका वारियत पॉलिसी क्या है, ये चार पॉलिसीज दे दें हम आपको वोट देंगे, अगर कौम यकसू होकर इन बातों पर आ जाएगी तो मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, अदरवाइज मेरा भाई आपकी इकोनॉमी रिवाइव नहीं करेगी ना सरवाइव करेगी, आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री खत्म हो गई है, जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो भी मकसद ले जाएगा इंडिया, वो नहीं छोड़ेगा, पानी आपकी जेरे जमीन डेप्थ इतनी चली गई है कि अब जो लोग जिम्मेदार हैं उनसे पूछें जाके क्या हालात हैं, पंजाब में आधी जमीनों को पानी नहीं मिल रहा, ठीक है, इसी तरह बाकी तमाम सूबों के अंदर हालात हैं, आपकी ये जो ये क्रॉप भी गई है आपकी, और ये जो आपका सबसे बड़ा जरिया ये गया, आपकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो थी कपड़े की, या जिसको जिसकी वजह से फैसलाबाद को इंडस्ट्रियल हब कहा जाता था पाकिस्तान का, वो बदकिस्मती से 50% पाकिस्तान से शिफ्ट होकर बांग्लादेश और दीगर ममालिक में जा चुका है, जो बाकी बच गया वो भी चला जाएगा, आपकी लैंड ऑर्डर सिचुएशन डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी लॉलेसनेस से, आपके सेक्टेरियन वायलेंस से, आपके टेररिज्म से, आपकी एक्सट्रीमिज्म सोच से, तो आपके मुल्क में कानून की अमलदारी भी नहीं हो सकती, इन तमाम चीजों के लिए जरूरी है। अब पाकिस्तान में आप एक चीज हल कर लें, अब यकीन करें पूरी कॉम ट्रैक पे आ जाएगी और पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे, और वो ये है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी, फिरका वारियत और तालिबानाइजेशन से निजात दिलाने के लिए वन पॉइंट एजेंडे के ऊपर आप मुतफिक हो जाए, कौम मुतफिक हो जाए, पाकिस्तान इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसमें देखें, हमने तो जो सबसे पहली बात यह है वो ये है कि जो मजलूम कम्युनिटीज़ हैं उनको इकट्ठा होना होगा और जालिम और मजलूम का फ़र्क करना होगा, अपनी सफ में जालिम को नहीं बिठा सकते, ठीक है, वहाँ में किसी और सेक्ट का बंदा लेने में कोई इतराज़ नहीं है, अगर वो इन पब्लिक आके कह दे कि मेरा इस कालादम जमात से ताल्लुक नहीं है, कोई भी नहीं कहेगा, इनकी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं कहती, कोई बंदा नहीं कहता, वो इन कमरा सेशन वाली बात है या कमरे में बैठ के निजी गुफ्तगू में ऑफ द रिकॉर्ड कह देंगे कि जी हमने इन्हें समझाया ये नहीं करना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, असला नहीं होना चाहिए, ऑन कैमरा आके कहेंगे कि नहीं ये वो बस देखें जी उनके पास ये एक्सक्यूज था और उसकी लॉजिक ही देते हैं, हमने अपना वोट भी बचाना, अपना मसलक बचाना। तो जालिम और मजलूम की पहचान सबसे पहले ज़रूरी है, और दूसरी सबसे अहम चीज़, पाकिस्तान में इस वक्त दो कम्युनिटीज़ बिलखसूस टारगेट हैं, ایک اہل سنت ایک اہل تشیع، ہم نے اس معاملے کو وائڈر کر دیا. ہم اس معاملے کے اندر پاکستان کی جو غیر مسلم کمیونٹیز ہیں، کرسچینز ہیں، جو ہندو ہیں، ان کو بھی ہم اندر لے آئے ہیں. ہم اس کے اندر پاکستان کی سول سوسائٹی کو لے آئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز کے، وکلاء کے، ہمارے صحافیوں کے جو اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو سر انجام دیتے ہوئے شہید کیے جا رہے ہیں، جن کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. 5 جنوری کا جو کنونشن ابھی ہو رہا ہے، اس میں ہم نے ان تمام طبقات کو نمائندگی دی ہے. تو یہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلی بات ہو یہ کہ مظلوم ایک پیج پہ ہیں، اور جو بڑی اچیومنٹس ہیں اس کے اندر 3-4 بڑی تقریبات کا انعقاد ہو چکا ہے، سنی اتحاد کونسل کی طرف سے بھی، جس میں اہل تشیع کی نمائندگی موجود تھی، اہل تشیع کی طرف سے بھی جس میں سنی اتحاد کونسل کی نمائندگی موجود تھی، اور دیگر تمام جماعتوں کی بھی. مقصد ہے جو لاہور کا کنونشن تھا ہمارا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی موجود تھی، اس میں مسلم لیگ کاف موجود تھی، اس میں این پی موجود تھی، اس میں مجلس وحدت المسلمین موجود تھی. جو گلگت کا کنونشن تھا وحدت المسلمین کا، اس کے اندر سنی اتحاد کونسل موجود تھی، اس کے اندر جماعت اسلامی موجود تھی، اس کے اندر آپ کی مسلم لیگ کاف موجود تھی، اس کے اندر آپ کی پیپلز پارٹی موجود تھی. تو مقصد ہے ہم نے اپنی آواز کو صرف 2 فرقوں تک محدود نہیں رکھا، پورے پاکستان میں پہنچا رہے ہیں. یہ بڑی اچیومنٹس ہیں. اور 5 جنوری کا جو اب یہ کنونشن آ رہا ہے، یہ مقصد ہے شہدائے پاکستان، قومی امن کنونشن بیاد شہدائے پاکستان. شہادت وہ دیتا ہے، لڑتا وہ ہے جو اس ملک کو سیف کر، جس کے دل کے اندر جذبہ ہوتا. جذبے کے بغیر شہادت انسان نہیں دے سکتا، کیونکہ جذبہ نہیں ہوگا تو بندہ گھر سے نہیں نکلے گا. تو جن لوگوں نے شہادتیں دی ہیں، ہم تو یہ بلیف کرتے ہیں کہ وہ شیعہ نہ ہوں، وہ سنی نہ ہوں، وہ کسی اور سیکٹ کے ہوں، وہ ایون مسلمان بھی نہ ہوں، اگر جو اسلام پاکستان کے لیے اگر کوئی غیر مسلم بھی مارا گیا تو ہم تو اس کے بھی سلوٹ کرتے ہیں. ہم فار دا سیک آف پاکستان، کیونکہ اس ملک کے اندر اقلیتوں کے بھی اتنے حقوق ہیں جتنے ہمارے ہیں. اور یہ تو اسلامک جو ہماری فلسفی ہے، جو ہماری ہسٹری ہے، جو ہماری اسلامک گیون لائنز ہیں، جو ہماری شریعت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی یہی کہتی ہے کہ اقلیتیں آپ کے مساوی ہیں، اپنی عبادت میں بھی، روزمرہ زندگی میں بھی، معاملات زندگی کے اندر، ہر لحاظ سے. تو اگر آپ کی کوئی اقلیت آپ کی سیکورٹی فورسز میں، آپ کی فوج میں شامل ہو کے پاکستان کے لیے لڑتا ہے، تو ہمارے لیے تو قابل احترام ہے، وی سلوٹ دیٹ پرسن. تو یہ بڑی اچیومنٹس ہیں. 5 جنوری ول بی دا بگیسٹ اچیومنٹ آئی گیس. اور اس دن پاکستان میں ایک ایسی سوچ کا احیاء ہوگا، جو پاکستان بچانے والے لوگ تھے، جن کے اکابرین نے پاکستان بنایا، جن کے بزرگوں نے پاکستان بنایا، جن کے اسلاف نے قربانیاں دیں، جن کی نسلیں آج تک پاکستان کے لیے شہادتیں دیتی آ رہی ہے، اب وہی لوگ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ پاکستان کو بچانے کے لیے، آگے بڑھیں گے. اور اس میں میں تو یہ کہتا ہوں، ہم اس میں مذہب کی مسلک کی بات ہی نہیں کریں گے. جو پاکستانی ہے وہ پاکستان کو بچانے کے لیے آگے آئے. اور 5 جنوری کا کنونشن انشاءاللہ طالبان کے خلاف، ملک دشمن طاقتوں کے خلاف، کالعدم جماعتوں کے خلاف، قتل و قتال کرنے والے گروپوں کے خلاف، یہ ایک ریفرنڈم ہوگا. اور اس کے بعد ایک ایسا عوامی مومنٹم ہم انشاءاللہ بنائیں گے اور پریشر بڑھائیں گے کہ ہم جب جدوجہد کی بات کرتے ہیں یا پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ الحمدللہ بڑا پیسفل ہے. ہم پروٹیسٹ کے لیے 1,00,000 بندہ بھی لے کے آئیں گے تو کسی ایک پاس بھی ویپن نہیں ہوگی. ہم اپنا سینہ دیں گے اس ملک کے لیے، یہ تو ہمارا حق ہے. ہم جہاں مرضی چاہیں دھرنا دے سکتے ہیں، ہم جہاں مرضی چاہیں ہم روڈ کے اوپر نکل سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو وہ انشاءاللہ وہ اپنا رائٹ ہم استعمال کریں گے پر امن. ہم پر امن رہتے ہوئے اس پاکستان کو بچائیں گے بھی انشاءاللہ. اور 5 جنوری پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ایک نیا دن ہوگا پاکستان کے لیے انشاءاللہ. بہت شکریہ.